नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्रालय ने आज कहा है कि भारत की रक्षा आवश्यकताओं का स्रोत पूरी तरह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और रणनीतिक आकलन द्वारा निर्धारित होता है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रक्षा खरीद पर एक प्रश्न के उत्तर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए ये बात कही। भारत रूस संबंधों पर एक प्रश्न के उत्तर में प्रवक्ता ने कहा है कि विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध अपनी योग्यता पर आधारित है और इन्हें किसी तरह के तीसरे देश के माध्यम से नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य 2035 तक 19,000 मेगावाट स्वच्छ और नवीकरणीय जल विद्युत क्षमता चालू करने के लिए तैयार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह पहल बिजली उत्पादन से कहीं आगे है। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार सृजन, सड़कों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे में सुधार और स्थानीय समुदायों के साथ संसाधन आधारित संपदा को साझा करके समान विकास सुनिश्चित करना है। कामेंग सुबनसिरी और दिबांग जैसी प्रमुख परियोजनाओं को उल्लेख करते हुए श्री खांडू ने कहा कि यह पहल दूरदराज के गांवों में भी आशा, अवसर और समानता लाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अरुणाचल को न केवल एक खूबसूरत सीमांत क्षेत्र के रूप में बल्कि भारत के सतत ऊर्जा भविष्य में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भी देखती है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज टोनी पोलो मिशन स्कूल फॉर दी हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड में लेट्स स्पीक अरुणाचल विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेते हुए संस्था को प्रदान की जाने वाली वार्षिक अनुदान राशि को 1,40,00,000 रुपए से बढ़ाकर 2,00,00,000 करने का और स्कूल की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए 5,00,00,000 का कम्पोर्स फंड आवंटित करने की घोषणा की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने आगामी राज्य वार्षिक बजट में अनुदान को शामिल करने का आश्वासन भी दिया। जिला सड़क सुरक्षा समिति ने आज अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाले आगामी सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त विशाखा यादव ने जोर देकर कहा है कि DRSC की योजनाएं व्यवहारिक, कम लागत वाले फिर भी प्रभावशाली हस्तक्षेपों पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने उपस्थित ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों से सड़क सुरक्षा सप्ताह में सक्रिय रूप से भाग लेने और इससे जुड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर में योगदान देने का आग्रह भी किया। इस बीच उपायुक्त ने नाहरलगन और जीरो के राजमार्ग प्रभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है कि जागरूकता सप्ताह शुरू होने से पहले सरकार द्वारा जारी सड़क सुरक्षा सुझावों और दिशा निर्देशों को प्रमुख स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। तिरप जिले में मानव हाथी संघर्ष की एक दुखद घटना में कल जिले के थालोट गांव में तीसरी जानलेवा घटना घटी है। मृतक पर रात 9 से 10 बजे के बीच उसके घर के परिसर में ही एक जंगली हाथी ने हमला किया था। इस बीच देवमाली के मुख्य वन संरक्षक चिमोय सिमाई ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और खाने के सामानों को यहां वहां न फैलाने की सलाह दी है, क्योंकि इससे हाथी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करने के लिए विभाग, जिला प्रशासन, ZPM, क्षेत्रीय प्रमुखों और गांव बूढ़ा की एक आपातकालीन समन्वय बैठक बुलाने की योजना की भी घोषणा की। पंचायती राज विभाग अनिनी द्वारा शिक्षा विभाग और हॉफ डिफेंस के सहयोग से कल शिक्षा साथी दिबांग पहल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य दिबांग वैली के सभी स्कूलों में महत्वपूर्ण करियर परामर्श सत्र आयोजित करना है, जिससे युवाओं को उनके भविष्य में सफलता के लिए तैयार किया जा सके। उद्घाटन सत्र का आयोजन PM श्री अपर प्राइमरी स्कूल आंगोलिन में किया गया, जहां 45 से अधिक छात्र और उनके अभिभावक भविष्य की संभावनाओं को तलाशने के लिए एकत्र हुए। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों तवांग, लोअर दिबांग वैली और चांगलांग को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।